देखिए रास्ता तो बातचीत ही होता है, पर उसमें एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, ऐसे मुद्दों को जिनके आसानी से सुलझाया जा सकता है उसको पाकिस्तान ने इतना तूल दे दिया जाता है, और जब उनको पता है कि इस वक्त रिश्ते खराब चल रहे हैं और एक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बताया जाता है। ये असल में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर किसके पास डिसीजन मेकिंग है, यही समझ में नहीं आता कि सिविलियन गवर्नमेंट के पास है कि आर्मी के पास है, कि कौन तय करेगा कि रिश्ते कैसे होने हैं। उसकी वजह से अक्सर बड़ी बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती है। अब एक जाधव का मुद्दा है, उसको सडनली आर्मी कोर्ट क्यों डिसाइड करें, सिविलियन कोर्ट में क्यों नहीं डिसाइड हो सकता। अब इस तरह की चीजें तो यहाँ के अवाम को समझ में नहीं आती है।
इफ्तिखार हुसैन साहब, आप फरमाइए कि पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट कर रहा है।
जंग इसी बात का मसला हल नहीं कर सकती, जितनी देर तक मुज़ाकरात न हो। और हमारे मुल्क की ये नीयत या ख्वाहिश है कि हम हमसाया मुल्क से अच्छे तल्लुकात रखें, और अफवाहों तो जो सारा मसला पानी का मसला है, सड़कों की सिक्योरिटी का मसला है, बाकी सारे मामलात हैं, हम तो इसमें पूरा तावन करते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी इसी काम में भी उनकी काम पेशरफ्त नहीं होती, जब करीब को बात आती है वो बाई काट कर शोर मचा देते हैं। और उनकी ख्वाहिश रही है ये, वो अपनी सियासत बचाने के लिए, अपने एक जिदा अपने गुजरा रखने के लिए कोई ना कोई नया इशू जो है शुरू कर देते हैं।
मिश्रा साहब, आप कुछ देखते हैं इम्कान तो आने वाले हफ्तों और महीनों में के दोनों एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की मेज पर आ सके?
देखिए कोई ऐसी मुश्किलात नहीं जिसको कि सुलझाया नहीं जा सके, सिर्फ दिक्कत ये है कि अगर ये पता हो कि रास्ता कौन सा लेना है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किससे बात की जाए। शरीफ की सरकार कुछ और बात करती है, फौज की तरफ से कोई दूसरा संदेश आता है, कोई दूसरा सिग्नल आता है, तो सारी दिक्कत तो यहाँ पर यह है कि किससे क्या बात की जाए। इतने सालों से यही बात चल रही है, मतलब कहीं पर भी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता है कि बातचीत हो सके। कितनी बार वो प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ से मिले और वहां से कुछ और बात कही जाती है, फिर कुछ और हादसा हो जाता है, फिर उसमें कोई पकड़ा नहीं जाता, वो कहते हैं कोई सबूत ही नहीं है।
सलमान आबिद साहब, हम गुफ्तगु कर रहे थे असल में कि भारत ने जो मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कैंसिल की है उसके फैक्ट्स के हवाले से आप इस पे अपना इनपुट दे सकेंगे इख्तिसार के साथ।
जिस वक्त से ये कुलभूषण का वाकया आया है उसके बाद से तो आपने देखा कि भारतीय मीडिया में जो एक एग्रेशन पाया जाता है और जिस किस्म का रद्द अमल जो है सुषमा स्वराज ने फिर जो उनके वजीर दाखिला हैं उन्होंने दिया है, उससे तो एक लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रेशन का जो पॉलिसी है वो एक डोमिनेंट फैक्टर के तौर पर आएगी। तो मुझे लगता है ये कि जो स्ट्रेटेजी है इस वक्त भारत की, उसमें लगता है ये कि पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने की जो पॉलिसी है वही डोमिनेंट करेगी।
एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जो मुतालबा है भारत का कि वो काउंसलर एक्सेस दिया जाए, क्या डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत वो उसका हक नहीं बनता?
देखिए हक तो बहुत सी चीजों का बनता है, लेकिन पहली बात तो ये बात माननी पड़ेगी कि जो कुलभूषण है उनके उनकी उनका जो मामला है वो फौजी ट्रायल के सूरत में हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का मौकफ ये है कि वो स्टिल जो है वो वहाँ के बहरिया के अफसर थे, तो इसलिए जो भी कुछ हुआ है वो पाकिस्तान के कायदे जवाबत के अंदर रहते हुए जो दुनिया भर में मुसलमा असूल हैं उनके अंदर हुआ है। अब अगर भारत को डिप्लोमेसी के तौर पर भी कुछ चीजें की रियायत चाहिए, किसी चीजों पर फैसिलिटेशन चाहता है पाकिस्तान से, तो उसका स्टाइल भी फिर दो तरफा बातचीत के जरिए मुमकिन होगा ना। लेकिन अगर भारत उसको अपना बेटा कहेगा और कहेगा कि हम आखिरी तक जाएंगे, यहाँ तक कहा कि उन्होंने कि अगर उसके खिलाफ कुछ सजा पर अमल दरामद होता है तो हम उसे कत्ल समझेंगे, और फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें हो रही है, तो उससे फिर एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है। तो अगर भारत चाहता है कि डिप्लोमेसी के तौर पर इसको बात को आगे लेके चले तो फिर डिप्लोमेसी की विकेट पे खेलना पड़ेगा ना। तो मैं खुद मानता हूं कि बहुत से मामलात ऐसे हैं कुलभूषण के मामले में जो डिप्लोमेसी के जरिए अभी बहुत बात आगे जाएगी, लेकिन फिर उसके लिए भारत को अपने कार्ड भी डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर ही खेलने पड़ेंगे।